अभी की सुन विनीत ने थूक निगल लिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं। और इधर उधर देख ऊपर की ओर इशारा करते हुए आरवी से बोला, अयांश, अयांश ऊपर है ना आरवी, मुझे अयान से काम है, मैं आता हूँ। बोल विनीत वहां से उसी वक्त चला गया। अभी ने रोकना भी चाहा सामने आकर, पर वो अभी को साइड कर निकल गया। ये देख अभी मंद मंद हंस दिया और उसे ऊपर की ओर जाते देख मन ही मन बोला, कब तक बचेंगे विनीत जी, आज की रात हम साला जीजा को साथ गुजारनी है। अयांश का रूम। अयांश अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। विनीत ने डोर नॉक किया। अयांश ने डोर की ओर देखा, कुछ कहता कि विनीत मुस्कुराते हुए अंदर चला आया और अयांश के पास वाले सोफे पर पसर कर बैठ गया और नीचे जो हुआ उसको सोच हंसने लगा, वो भी पागलों की तरह। उसे इस कदर हंसते देख अयांश हैरान होते बोला, व्हाट हैपेंड। विनीत हंसते हंसते बोला, तुम्हारी घरवाली और साली दोनों ही बहुत औसम है जाने मन, पता है नीचे क्या हुआ, अंकल आंटी फाइट कर रहे थे, वही जो हस्बैंड वाइफ में होती है, टॉपिक चाहे कुछ भी हो चाहे, बट तू मैं चलती है ना, वही हो रही थी अभी, तुम भी देखते ना तो तुम्हें भी मज़ा आ जाता, स्पेशली आरवी मालती को देखकर। अपने पेरेंट्स को फाइट करते देख बच्चे उनको रोकते हैं ना, बट वो दोनों बहनें उनके ही मज़े ले रही थी, उनको मज़े आ रहे थे। दादी माँ ने रोका अंकल आंटी को, बोली मत रोको, चलने दो ना कार्यक्रम, मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो दोनों मज़े लेती बड़ी क्यूट लग रही थी। विनीत की बात सुन अयांश मुस्कुरा दिया और लैपटॉप पर उंगली चलाते बोला, वो आज बहुत खुश है। विनीत मुस्कुराते हुए बोला, खुश तो होगी ना, आरवी की फैमिली उसकी की तरह ही कितनी प्यारी है ना अयांश। पर उससे ज्यादा नहीं। हाय क्या बात है, मोहब्बत तो देखो जनाब की, महबूबा से ज्यादा प्यारा कोई लगता ही नहीं है, ही नहीं कोई उससे ज्यादा प्यारा, तो लगेगा कैसे, कहते अयांश विनीत की ओर देख तिरछा मुस्कुरा दिया और वापस अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ा ली। तभी विनीत ने सोफे पर अपना सिर टिका लिया और मालती के बारे में सोच मुस्कुराते हुए मन ही मन खुद से बोला, आरवी से ज्यादा प्यार कोई नहीं माना, पर कोई है उससा ही प्यारा। जिस काम के लिए गए थे वो कराए तुम, अयांश ने विनीत से पूछा, पर विनीत कुछ नहीं बोला। अयांश ने लैपटॉप से नजरें हटाकर विनीत की ओर देखा जो कि सोफे से सिर टिकाए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अयांश ने उसे आवाज दी, विनीत, पर फिर भी विनीत नहीं बोला। विनीत को कुछ न कहता देख खोया सा देख अयांश उसे हैरानी से देखने लगा। कुछ पल अयांश उसे देखता रहा, इसको क्या हुआ, और एक बार फिर आवाज दी, सुनो, पर उस पर भी विनीत की ओर से रिस्पांस नहीं आता देख अयांश ने सोफे पर पड़ा पिलो उठाया और विनीत पर दे मारा जो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगा। इतने जोर से लगा पिलो कि विनीत अपनी ख्यालों की दुनिया से उसी पल बाहर आ गया। उसने अयांश की ओर देखा जो कि उसे घूर रहा था। विनीत कुछ कहता कि अयांश उसे डांटने लगा, कुछ बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। विनीत खुद को संभाल अयांश की बात पर गौर कर बोला, ध्यान कहीं नहीं, यहीं तो हूँ, बोलो क्या कह रहे थे, क्या पूछ रहे थे। अयांश उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बात फिर से रिपीट करूँ। विनीत एक पल थूक निगल लेता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, करनी ही पड़ेगी, अब कोई और ऑप्शन नहीं है यार, देख लो जरूरी है तो कर दो रिपीट, वरना रहने दो। जैसे ही विनीत ने ये कहा अयांश ने फिर दूसरा पिलो उठाकर उसके मुँह पर दे मारा। इडियट, कौन सी दुनिया में गुम हो जो पता ही नहीं चल रहा है तुम्हें कोई बुला रहा है, कैसी हरकतें कर रहे हो, होश में आओ, आज तुम्हारी वजह से आरवी को चोट लग जाती और अब खुद मार खाने वाले काम कर रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। विनीत हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, वो आरवी को जानबूझकर नहीं गिराया, सॉरी, रियली सॉरी, अब सुन रहा हूँ, बोलो ना, अच्छे से रिस्पॉन्स भी दूंगा। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, अयांश ने विनीत को घूरते हुए पूछा। मेरा फ़ोन मेरे पास है, कहते विनीत ने कोट से फ़ोन निकाल वापस कोट की जेब में रख दिया। मैंने तुमको कितनी कॉल की, तुमने उठाया क्यों नहीं, कहते अयांश ने वापस नजरें लैपटॉप पर जमा ली। वो पता नहीं चला, बैटरी चली गई थी ना फ़ोन की, वैसे तुमने मुझे कितनी कॉल क्यों की, तुम जिंदा हो या मर गए, बस यही जानने के लिए, अयांश ने विनीत की ओर देखते कहा, तो विनीत हंस दिया। रियली, मैं जिंदा हूँ जाने मन, वो भी शत प्रतिशत, देखो तुम्हारे सामने मैं ही बैठा हूँ, मेरा कोई भूत सूत नहीं। शट अप, अयांश विनीत पर चिल्लाया तो उसी पल विनीत ने होठों पर उंगली रख ली। अयांश का घूरना जारी था, जिस काम के लिए गए थे हुआ, ओ तो इसलिए कितनी कॉल कर रहे थे तुम मुझे, वरना तुम मुझे, बोलते विनीत ने अयांश की ओर देखा जो कि उसके सामने हाथ की मुट्ठी बना चुका था। ये देख विनीत ने फिर फट से मुंह पर उंगली रख ली। अयांश मुट्ठी बने हाथ को घुमाते हुए बोला, जितना पूछा है उतना जवाब दोगे तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। विनीत ने माचूम बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। अयांश वापस लैपटॉप पर नजरें कर उस पर उंगलियां चलाते हुए बोला, इंस्पेक्टर से मिले, हाँ मैं मिलकर आ रहा हूँ इंस्पेक्टर से, क्या पता चला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्टर को पानी के साथ ऐसा जहर दिया गया था तो देने के 4-5 घंटे बाद असर करे, ताकि देने वाले को भी वहां से भागने में पूरा वक्त मिल जाए, वो भाग जाए और पकड़ में ना आए। सुबह जब उसे जेल में डाला गया, उसके एक घंटे के भीतर ही उसको जहर दे दिया गया था। ऐसा जहर जिसने 4 घंटे बाद ऐसा असर डाला कि वो बेहोश हुआ और बेहोशी के 5 मिनट में ही उसकी मौत हो गई थी। किसने दिया? कांस्टेबल ने। जांच और पूछताछ से पता चला है उसने निगरानी के दौरान उस रिपोर्टर को पानी दिया था जिसमें उसने जहर मिलाया था। मात्र 10 मिनट में वो अपना काम कर पेट दर्द का बहाना कर दवाई लेकर आ रहा हूँ पास की मेडिकल से, वहां से चला गया। उस वक्त शक भी नहीं किया जा सकता था उस पर, क्योंकि उस रिपोर्टर के साथ जो हुआ वो 3-4 घंटे बाद हुआ। उसको ढूंढा जा रहा है आयांश, पर अभी तक नहीं मिला। आसपास की सारी जगह उसके पते पर उसे जाकर ढूंढ लिया, पर वो फरार है। मेडिकल पर तो गया ही नहीं था, पता नहीं कब पकड़ में आएगा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, कानून की कड़ी व्यवस्था के चलते भी आए दिन जुर्म घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। कानून के ही लोग जुर्म कर रहे हैं, बाहर तो चलो देखरेख वाले ना होते, पर पुलिस स्टेशन के अंदर भी लोग जुर्म को अंजाम दे जाते हैं जिसका पता ही नहीं चलता कब हुआ किसने किया। जब तक पता चलता है मुजरिम पहुंच से बाहर हो जाते हैं, फिर लगे रहो रात दिन उनको ढूंढने, पता नहीं कौन से कोने में मिलेगा वो कांस्टेबल। आयांश कुछ सोचते हुए बोला, मिलेगा ही नहीं। विनीत हैरान होते हुए बोला, मतलब?
आयांश लैपटॉप बंद कर विनीत की ओर देखते हुए बोला, मतलब जिसके कहने पर उस रिपोर्टर ने जो पार्टी में किया था उसको पता चल चुका था, हम उसे जेल भिजवा चुके हैं, उसके बाद उसको मारने की साजिश हुई क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। मैंने उसे मारा नहीं है, सिर्फ जेल में डाला है, जिंदा रखा है। उसके जिंदा रहने का मतलब साफ है ना, दुश्मन को खतरा। उसके पहले मोहरे को मैंने मार दिया था तो उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, बट उस झूठे रिपोर्टर के चलते था। जान ली गई है, इस बात से साफ पता चल रहा है कि रिपोर्टर मेरे दुश्मन के बारे में जानता था, शायद मिल भी चुका था, बता सकता था हमें। ऐसा कुछ ना हो सो जल्द से जल्द उसने उस कांस्टेबल को खरीदा और उसे रिपोर्टर को मारने का काम सौंपा, जो कांस्टेबल ने कर दिया। वो एक कांस्टेबल था, बड़े बड़े अफसर बिक जाते थे पैसों के लिए और बच भी जाते हैं, फिर वो क्यों नहीं बिकता? और अब वो सेफ जगह है, यानी ऐसी जगह जहां उस तक हम या पुलिस ना पहुंच सके। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कांस्टेबल हमारी पकड़ में आ जाता, दुश्मन का भी हमें पता चल जाता। खुद के बचाव के लिए दुश्मन की ओर से खेल खेला गया है, विनीत परेशान होते हुए बोला। कहा था ना मैंने, पता कर लेते हैं हम, उस रिपोर्टर से पूछ लेते हैं। अगर हम पूछ लेते ना तो आज हम सीधा दुश्मन तक पहुंच जाते, ना कि उसके आदमी के पीछे लगे होते।